अहाना कमरे में आई ही थी कि उसकी रुलाई फूट गई। बेचारी को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसका दोष क्या था जो उसे इतना कुछ भला बुरा सुना दिया गया। अभी तो उसने घर में कदम भी नहीं रखा था और जैसा व्यवहार रूपाली जी ने उसके साथ किया था, उसका मासूम दिल खून के आंसू रो रहा था। मन में बस एक सवाल था, क्या वो उनके साथ सारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके घर में सब पलकों पर रखते थे उसे, शायद इसीलिए रूपाली जी का ऐसा व्यवहार उसे सहन न हुआ। किसी के कदमों की आहट हुई, अहाना ने तुरंत अपने हथेलियों से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। इतने में किसी ने उसके कंधों को थाम लिया। इस स्पर्श को पहचानते हुए उसका दिल एक बार फिर भराया, आंखें पसीजने लगी। अक्षय ने उसके कंधों को थामते हुए उसे अपनी ओर घुमाया। अहाना ने अपनी आंखों पर पलकों का पहरा लगा लिया, शायद अपना दर्द और आंसू उसे दिखाना नहीं चाहती थी। अहाना, इधर देखिए मेरी ओर, अक्षय ने बड़े ही प्यार से उसे पुकारा। अहाना ने इनकार में सर हिला दिया। रो रही हैं ना आप, इसलिए मेरी ओर नहीं देखना चाहती? अहाना की चोरी अक्षय ने पल भर में पकड़ ली थी। उसकी भीगी पलकें और उदास चेहरा उसके दिल के हाल की चुगली कर ही रहा था। अहाना, आई एम सॉरी। पल भर की खामोशी के बाद अक्षय की ठहरी हुई नर्म आवाज अहाना के कानों से टकराई। उसकी तितली के पंखों जैसी बड़ी बड़ी पलकें उठ गईं। आप सॉरी मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। अहाना की भीगी निगाहें अक्षय की निगाहों से चाटक रहीं। अगले ही पल अक्षय ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामते हुए उन आंखों की नमी को चुरा लिया। आप क्यों रो रही हैं? जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं जानता हूं कि मम्मी की बातों का आपको बहुत बुरा लगा होगा। उन्हें वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थीं, पर कम से कम मुझे तो रोकना चाहिए था उन्हें। मेरी मौजूदगी में वो बहुत गलत बातें सुना गईं आपको, जिससे आपको हर्ट हुआ होगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। मम्मी ने जो भी कहा उन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, उन्हें दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। वो डर गई थीं और मेरी चिंता में आपको बेवजह ही बहुत कुछ कह गईं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और मैं भी उन्हें रोक नहीं सका। पर वो माँ है मेरी, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? उनसे लड़ झगड़ तो नहीं सकता, ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता, बस समझा ही सकता हूँ, और मैंने कोशिश की थी। बाद में मैं अकेले में उनसे बात करके उन्हें कह दूंगा कि दोबारा ऐसा कुछ ना करे। बस आप प्लीज़ दुखी मत होइए। मत करिएगा आप उनसे बात। अगर आप उनके सामने हमारी तरफदारी करेंगे तो वो और नाराज़ हो जाएंगी हमसे। आपने बाहर हमारे लिए जितना कहा उतना बहुत है हमारे लिए। मम्मी जी हमें पसंद नहीं करती, उस हिसाब से उनका ये रिएक्शन स्वाभाविक था। उन्हें जो बोलना था बोल लिया उन्होंने, कम से कम अब उनका मन शांत हो गया होगा। अगर आपने उनसे कुछ कहा तो बात और आगे बढ़ेगी और बिगड़ेगी, इसलिए रहने दीजिए। अब हमें उनकी बातों का बुरा नहीं लगा और हम उदास भी नहीं होंगे। अहाना ने जितनी सरलता से ये सब बातें कहीं, अक्षय बस उसे देखता ही रह गया। पल भर को उन बड़ी बड़ी आंसुओं से भीगी कजरारी आंखों की गहराइयों में झांकता रहा, फिर गंभीरता से बोला, अहाना मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको फ़र्क सिर्फ मुझसे पड़ना चाहिए। मम्मी या कोई और आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, आपको उसे खुद को इफ़ेक्ट नहीं करने देना है। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, क्या कहता हूँ, आपको सिर्फ इससे फ़र्क पड़ना चाहिए। आप जानती हैं कि आपने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं थी, तो बाकी किसी बात का आप कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ऐसी बातें जो आपके दिल को दुखाएं, उसे अपने दिल तक पहुँचने ही मत दीजिएगा। जो गलत बात करे उसे एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। किसी के भी वजह से अपनी मुस्कुराहट को खोने मत दीजिएगा, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ आपका और मेरा है। आई नो आगे का सफ़र आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। इसीलिए गलत बातों को खुद को इफ़ेक्ट मत करने दीजिए और बस मम्मी के दिल में जगह बनाने की कोशिश कीजिए। आपके प्रति उनके मन में जो गलत धारणा है उसे मिटाने की कोशिश कीजिए, और इसमें मैं आपका साथ दूंगा। अक्षय की बातें सुनकर अहाना ने सहमति में सर हिलाया और आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। अक्षय ने भी उसे अपनी पनाहों में ले लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शायद अभी उसे इसी प्यार व अपनेपन की ज़रूरत थी। यहाँ क्या महारानी जैसे बैठकर खाने आई हो? ये मायका नहीं है तुम्हारा कि तुम बैठकर पलंग तोड़ोगी और हम तुम्हारी चाकरी में लगे रहेंगे? ससुराल है तो उठो और जाकर रसोई संभालो। ऐसे तो हमें ऐसी बहू मिली है कि अब हमारी किस्मत में बुढ़ापे में भी दिन रात खटना ही लिखा। कम से कम जितने दिन हो उतने दिन तो कुछ सुख हो हमें बहू होने का। अहाना अभी कपड़े बदलकर फ्रेश होकर कमरे में आई ही थी कि वहां रूपाली जी पहुंच गई और उसे देखते ही उस पर भड़क उठी। शायद वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने ही यहां आई थी। कहां बर्दाश्त होता था उनसे किसी का अहाना का साथ देना, और यहां तो उनका पूरा परिवार ही उसकी पैरवी में खड़ा हो जाता था, जिससे अहाना के प्रति उनके मन में और ज्यादा कड़वाहट भर जाती थी। कहीं ना कहीं अहाना भी उनके गुस्से की वजह समझ रही थी। उसने बड़े ही शांत व सौम्य स्वर में जवाब दिया, हम बस आ ही रहे थे, आप बता दीजिए क्या बनाना है, हम बना लेंगे। आओ जरा रसोई में, बताते हैं तुम्हें क्या बनाना है। तल्ख लहजे में उन्होंने इतना कहा और जैसे दंदनाते हुए अंदर आई थी वैसे ही वापस चली गई। अहाना ने गहरी सांस छोड़ी और उनके पीछे पीछे चली आई। रात के खाने के वक्त भी रूपाली की के तेवर तीखे बने रहे और अहाना के बने खाने में उन्होंने खूब कमियां निकाली, पर वो खामोशी से सुनती रही। जवाब देने की शिक्षा जो उसकी मम्मी ने नहीं दी थी, बस कहती रही कि आगे से ध्यान रखेगी। अन्वय उनका ऐसा बर्ताव देखकर मन ही मन सुलगता रहा। अभिजीत जी भी चुप्पी साधे बैठे रहे क्योंकि खाने के वक्त बहस नहीं करना चाहते थे। अक्षय भी खामोश था। रात के खाने के बाद अहाना ने रसोई का सब काम समेटा। जैसे ही कमरे में कदम रखा, एक जोड़ी बाहों ने पीछे से उसकी कमर को जकड़ते हुए उसे पीछे की ओर खींच लिया, जिससे उसकी पीठ पीछे खड़े शख्स के सीने से टकरा गई। पर ये छुअन, ये एहसास, ये खुशबू कुछ भी अनजान नहीं था उसके लिए। वो बहुत अच्छे से पहचानती थी इस शख्स को, तभी तो उसके थकान भरे चेहरे पर सुकून उतर आया था और सिमटे लब खिल उठे थे। लगता है आप हमारे आने का ही इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, बड़ी ही शिद्दत से आपके आने का इंतजार किया जा रहा था। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर अपने बाहों के घेरे को कसते हुए उसे अपने और करीब कर लिया था। अच्छा, तो इस इंतजार की वजह क्या है? अहाना अक्षय का ये अंदाज देखकर मुस्कुरा उठी थी। अक्षय ने सवाल सुनकर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए जवाब दिया, आपका एक गिफ्ट पेंडिंग है मेरे पास, जिसे मैंने आपको अगली बार आपके यहाँ आने पर देने का वादा किया था, और आप इतने महीनों बाद लौटी हैं। मैंने, मेरे दिल ने और उस स्पेशल गिफ्ट ने बड़ी ही बेसब्री से आपके आने का इंतजार किया है। अक्षय की बात सुनकर अहाना को अक्षय के साथ बिताई वो पहली रात याद आ गई, तभी तो ये बात हुई थी उनके बीच। अच्छा, तो अब तो हम यहाँ आ गए हैं, दिखा दीजिए हमें हमारा तोहफा। बस अभी दिखाते हैं, कहते हुए अक्षय ने उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद किया और उसकी हथेली थामते हुए उसे बेड के पास ले आया। उसे वहां खड़ा किया, फिर बेड पर चढ़कर पीछे की दीवार पर लगी चादर को हटा दिया। अगले ही पल जो नजारा अहाना के सामने आया उसे देखकर अहाना चौंक गई। बेड के पीछे की पूरी दीवार अनेकों तस्वीरों से सजी थी। बीच में उनकी शादी की बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें उन दोनों के साथ उनका परिवार भी था। उसके दोनों साइड में फोटोज का कोलाज था, जिसमें दोनों की शादी की रस्मों की तस्वीरें थी।
हर रस्म को बड़ी ही खूबसूरती से तस्वीर के रूप में कैद करके इस दीवार पर सजा दिया था। ऊपर नीचे कुछ शादी के बाद की रस्मों की तस्वीरें थीं, तो कुछ अक्षय और हाना की अलग अलग फोटोज लगी थीं। किसी में अक्षय अपने परिवार व दोस्तों संग नजर आ रहा था, किसी में सिंगल था, किसी में अन्वय और फलक की नौटंकी दिख रही थी। ऐसे ही कुछ अहाना की शादी से पहले की अलग अलग मौकों की तस्वीरें लगी थीं। किसी में वो अपने मम्मी पापा के साथ थी, तो किसी में भाई बहनों संग, किसी में अंतरा और पल्लवी उसे तंग कर रही थी। उसकी जिंदगी की खूबसूरत यादें यहां सजाई हुई थीं, जिन्हें देखकर अहाना पहले तो हैरान थी, पर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये तस्वीरें लीक करने वाली उसकी अपनी बहन है। कैसा लगा आपको आपका गिफ्ट? अक्षय ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ सवाल किया। जवाब में दिलकश मुस्कान अहाना के लबों पर आ ठहरी। बेहद खूबसूरत, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमें ऐसा कोई गिफ्ट देंगे जो हमारे लिए आज के दिन को यादगार बना देगा। आपने तो हमारी जिंदगी के खूबसूरत पलों को समेट कर यहां सजा दिया। बहुत 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 खूबसूरत है आपका तोहफा, और इससे कीमती व बेमिसाल तोहफा आज तक हमें कुछ नहीं मिला होगा। थैंक यू सो मच। बोलते हुए अहाना कुछ भावुक हो गई थी, पलकें भीग गई थी, पर लब अब भी मुस्कुरा रहे थे। कितना मिस कर रही थी आज वो अपनी फैमिली को, कितनी आहत थी, और अक्षय के इस गिफ्ट ने उस कमी को पूरा करके उसके सारे दुखों को मिटाकर उसे मुस्कुराने की वजह दे दी थी। अगर पसंद आया तो ये आंसू क्यों हैं आपकी आंखों में? अक्षय ने भौं उचकाते हुए जरा कठोरता से सवाल किया। अहाना ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। ये देखकर अक्षय हौले से मुस्कुरा दिया। और भी कुछ है मेरे पास आपके लिए, बस एक मिनट रुकिए। उसे ठहरने का कहकर अक्षय कबर्ड के पास गया और कुछ देर बाद तीन शॉपर्स लेकर उसके पास लौट आया। अब इसमें क्या है? अहाना ने पहले उन शॉपर्स को देखा, फिर सवालिया निगाहें अक्षय की ओर उठा दी। ज्यादा कुछ खास नहीं है, कुछ दिन पहले मैं शॉपिंग पर गया था तो कुछ पसंद आ गया आपके लिए, ले आया कि आप आएंगी तो दे दूंगा। लीजिए, खोलकर देखिए आपको पसंद आया या नहीं। ये सुनते ही अहाना के जहन में पहला ख्याल यही आया कि जरूर वो कोई ड्रेस ही लाया होगा जिसमें उसे देखना चाहता हो। जाने कैसी ड्रेस लाया होगा, ये सोचते हुए वो जरा हिचकिचाई, फिर अक्षय के हाथ से शॉपर्स लेकर बेड पर रखकर देखने लगी। ये सब? अहाना ने बेड पर रखे कपड़ों की ओर इशारा करते हुए सवालिया निगाहों से कुछ हैरानगी से अक्षय को देखा। हैरान होना तो बनता था, उसने तो सोचा था कोई खूबसूरत सी ड्रेस होगी, पर उनमें नाइट सूट और टी शर्ट, प्लाजो, लोअर, स्टॉल, यही सब थे। अपने घर पर पहनती है ना आप ऐसे कपड़े? बाहर या घर में तो अभी नहीं पहन सकती, पर कमरे में तो पहन सकती हैं। यहाँ कोई आप पर रोक टोक नहीं लगाएगा, जैसे कंफर्टेबल फील करती हैं वैसे रहिए, क्योंकि आप कुछ भी पहने मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, इसलिए अब से आपको रात को सूट पहनने की जरूरत नहीं है। अक्षय ने सहजता से अपनी बात उसके सामने रख दी। अहाना कुछ पल उसे हैरानगी से तकती रही, फिर वापस बेड की ओर नजरें घुमाते हुए बोली, तब भी इतने सारे लाने की क्या जरूरत थी? मुझे जो पसंद आए मैंने ले लिए, तो पहन लीजिएगा। चलिए अब सवाल जवाब बंद कीजिए, जाकर जल्दी से चेंज कीजिए, बहुत थक गया हूँ आज मैं, जोरों की नींद आ रही है। अक्षय ने मुंह फाड़ते हुए उबासी ली। उसकी नौटंकी देखकर अहाना ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। बाकी कपड़े कबर्ड में रखकर वो एक जोड़ा लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके वापस कमरे में आई। हल्के गुलाबी रंग का नाइट सूट पहना था उसने, जिसमें ऊपर से कॉलर वाली शर्ट थी और नीचे ढीली सी पैंट। ठीक लग रहे हैं? अहाना ने झिझकते हुए सवाल किया। उसकी शर्म से गुलाबी चेहरे को देखकर अक्षय मुस्कुरा उठा। ठीक नहीं, बहुत क्यूट लग रही है, और नहीं भी लगती तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस सोना ही तो है। चलिए जल्दी से मेरे पास आइए, मुझे नींद आ रही है। बेड पर बैठे अक्षय ने अपनी बाहों को फैलाया। सकुचाते हुए अहाना उसके पास चली आई। आज दूसरी बार अक्षय के सामने ऐसे कपड़ों में आई थी, शायद इसलिए थोड़ा अजीब फील कर रही थी, पर अक्षय सहज था। वो अहाना को अपनी बाहों में भरते हुए लेट गया। अहाना भी बिना कोई एतराज जताए उसकी बाहों में सिमट गई और सीने पर सर टिकाए अपनी आंखों को मूंद लिया। अक्षय की बाहों के घेरे में एक अलग से सुकून का एहसास होता था उसे। यहां आते ही सब भूलकर बस इन धड़कनों में खो जाती थी।